ओम शांति। प्रश्न पूछा है ये 84 जन्मों पर, तो समझाया है 84 जन्म मैक्सिमम ये मनुष्य का जन्म गाए गए हैं, तो लिख दिया 84 लाख, लेकिन वास्तव में है 84 जन्म। तो कैसे? और प्रश्न है, कोई 84 जन्म लेते हैं, कोई 80 लेते हैं, कोई 50, 40, कोई एक दो भी लेते हैं। तो ये जो नंबर है 1, 2, 40, 50, 84, तो किस आधार पर आत्मा इतने जन्म लेंगी, ये निर्णय डिसाइड कैसे होता है? तो समझाया जाता है कि जो आत्मा है उसको समझना है, जो पहले निर्वाण धाम में रहती है, फिर नंबर वार, उसको नंबर वार, यहाँ भी नंबर आया ना, नंबर वार वो सृष्टि चक्र में आती है अपना पार्ट बजाने। तो वो अपना पार्ट वो किस आधार पर बजाती है, तो वो जो आत्मा है उसको समझना पड़े, ये समझने के लिए कि वो आत्मा में कैसा पार्ट है, उसको क्या चाहिए। कुछ चाहिए तभी तो यहाँ आते हैं ना, अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए यहाँ आते हैं। इच्छा पूर्ण करना अर्थात वो अनुभव करना जो उसको चाहिए। किसको स्वर्ग का सुख चाहिए, तो किसको द्वापर का सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो किसको कलयुग की अशांति में भी आनंद आता है, उसको अशांति भी नहीं लेकिन कहो भौतिक रूप में उसको सुख चाहिए, तो वो आते हैं बात पिछवाड़ी में। उसको साइंस में सुख चाहिए, तो विज्ञान तो आता है पिछले 100-200 साल में, तो उसी समय आती है, उसको वो सुख की तलाश होती है, तो उसको उस हिसाब से 4, 5, 6 जन्म मिलेंगे। और एक दो भी जन्म लेते हैं जो पूरे यही पार्ट है उनका, वो आकर चले जी जाते हैं, संगम युग में आते हैं, संगम युग में चले जाते हैं, लेकिन वो ऐसा ज्ञान नहीं लेते। क्यों? क्योंकि उनको 84 जन्म नहीं लेने, ज्ञान है उन आत्माओं के लिए जो 84 जन्म लेते हैं, वह जो सतयुग में, वह चलो द्वापर युग में भी आते हैं, द्वापर में भी आने वाले ज्ञान उठाएंगे अपनी योग्यता अनुसार, उसमें भी थोड़े होंगे लेकिन वो इनडायरेक्ट उठाएंगे, ऐसा डायरेक्ट नहीं। समझो कोई ज्ञानी तो आत्मा है, उसके प्रभाव में आ जाते हैं, तो वो जरूर उसके राज्य में द्वापर में जन्म लेंगे। द्वापर तो अभी स्वर्ग नहीं कहा जाता, उसको स्वर्ग में जन्म नहीं मिलेगा, स्वर्ग में वो आएंगे जो डायरेक्ट ज्ञान लेते हैं और धारणा करते हैं, श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत है गॉड फादर की, जो उसको क्रिएटर ऑफ हेवन कहा जाता है, तो वो बैठ श्रीमत सुनाते हैं। अभी जो मुरली चलती है उसको डायरेक्ट ज्ञान कहा जाता है, जो मुरली सुनते हैं उस पर से मनन चिंतन करते हैं, जरा सा भी उनमें ज्ञान का लाइट जगती है तो वो जरूर समझो वो स्वर्ग में आएंगे। अभी क्योंकि रचयिता स्वयं पढ़ाते हैं तो जरूर स्वर्ग में आएंगे, भले ही नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार आएंगे, जन्म भी पुरुषार्थ अनुसार लेंगे, कोई साहूकार बने, कोई राजा रानी बने, तो कोई ऐसे ही प्रजा भी बन सकते हैं। मोस्टली तो प्रजा रचती है ना, प्रजा तो ऐसे ही ये जो प्रदर्शनियाँ होती है उसमें से जो चक्र दिखाते हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान सुनाते हैं, वो भी प्रजा में चले जाएंगे, या ऐसे फिर राजधानी बनती है। तो समझाया कि जो एक दो जन्म लेते हैं वो भी सतो रजो औरतों में जरूर आते हैं, लेकिन वो इतना दुख नहीं उठाते क्योंकि वो इतना सुख भी नहीं उठाते। वो आते हैं भले साहूकार परिवार में जन्म लेंगे, उनको कोई बंधन ना होगा जो पहला जन्म होगा, और अच्छा ही रहेगा समझो सतो और रजो में। तो उनका जन्म पहला समझो, दो जन्म लेते हैं तो पहला जन्म तो उनका पूरा सुख में ही होगा, दूसरे जन्म में पहले पहले सुख फिर दुख। तो समझाया कि वो इतना सुख नहीं उठाते और इतना दुख भी नहीं उठाते, उनको विज्ञान के सुखों में रुचि है इसीलिए वो इस समय आते हैं। वो ये आकर्षण होती है ना, वहाँ बैठी है आत्मा निर्वाण धाम में, वहाँ उनको आकर्षण होती है कि अभी हमारा पार्ट शुरू हुआ, अब हम जाए। तो छुट्टी लेके आती है पार्ट बजाने। बाकी जो छोटे जन्म लेते हैं कम जन्म, उनका इतना हीरो पार्ट नहीं होता, वो अपना ही दुनिया में रहते हैं, अपनी ही दुनिया में रहेंगे, सुख और दुख की अनुभूति करेंगे। दुख कम होगा ये जरूर है, ऐसा भी नहीं कि हमें अधिक सुख मिलता है और उनको थोड़ा सुख नहीं। हाँ, हमें अधिक सुख तो मिलता है सतयुग में, लेकिन फिर कलयुग में हमें ही अधिक दुख भी मिलता है, तो हिसाब बराबर हो गया ना। तो किसी को ऐसा भी नहीं कि किसको ज़्यादा और कम, ना सभी को समान सुख और दुख। बाबा ने समझाया 75% अथवा 3/4 समय सुख में रहते हैं हम भी, और ये भी जो नए आते हैं एक दो जन्म के लिए भी आते हैं, वो भी समझो 3/4 समय सुख में अच्छा कार्य में बिताते हैं। ये पार्ट है ड्रामा का, यही ये लॉ है। तभी तो नहीं परमात्मा का हम बच्चा और हम 50-50, आधा सुख आधा दुख, तो फिर फायदा ही क्या। जरूर भगवान के बच्चों को फायदा होना चाहिए, कुछ तो अधिक मिलना चाहिए। तो 75% ही हमें बहुत अच्छा समय सुख में बिताते हैं। अच्छा, शांति।